हेलो दोस्तों, मैं हूँ उल्का जैन और आज आप सुनेंगे विष्णु प्रभाकर की कहानी बंटवारा। नंदा जब से घर से आई है उसका मन एक गहरे अवसाद से भरा रहता है। उसे लगता है जैसे वह एक नई दुनिया में आ पहुँची है जहाँ सब उसके परिचित होकर भी अपरिचित हैं। वह जानती है कि जिन्हें पीछे छोड़ आई है वे केवल दो प्राणी हैं, देवर और देवरानी। देवर को उसने गोद में खिलाकर पाला है। आपद विपत में वह माँ के समान उस पर छाई रही है। देवरानी को एक दिन अपनी बहू की तरह घर में लाई थी, जिसके ऊपर निछावर करने को उसने कुछ भी बचाकर नहीं रखा था। इन्हीं दो प्राणियों को पीछे छोड़कर वह निपट खाली जान पड़ती है। उसके पति, पुत्र और पुत्रियाँ सदा ही उसके साथ आज भी हैं, परंतु उनके कोलाहल में उसे जीवन नहीं मालूम होता। लगता है जैसे सब दीवार के चित्र की तरह मौन नृत्य कर रहे हैं। भाव होते हैं पर स्पंदन कहाँ है इन चित्रों में। उसे इस घर में आए अभी एक सप्ताह ही हुआ है, परंतु मालूम होता है जैसे युग बीत गए हैं, जैसे महाकाल ने सदा के लिए दोनों भाइयों को अलग कर दिया है। सहसा वह घर का काम करते करते ठिठक जाती है। कोई चिर परिचित स्वर सुनाई देता है, मानो कोई उसे पुकार रहा है, भाभी। लेकिन अर्ध चेतना की दशा भंग होती है तो वह देखती है उसका छोटा लड़का गोरा खड़ा हुआ कह रहा है, भाभी सुना नहीं तुमने, स्कूल को देर हो गई, रोटी दो मुझे। वह कांप उठती है। देवेन भी कभी ऐसे ही आकर पुकारता था, वही देवेन आज मुझसे अलग हो गया है। लेकिन ठीक ही हुआ, वह बुद्धिमान है, खूब कमाता है, इसलिए कुछ दिन से उसके मन में यह मस्त समा गई है कि कुटुंब का जीवन उसकी कमाई पर अवलंबित है और शासन करती है भाभी। परंतु शायद यह भी सोचा था कि भाभी का परिवार बड़ा है, मूर्ख कहीं का। विवाह करते ही उसने अपने परिवार को अलग कर लिया। मैंने अच्छा ही किया, कल को महाभारत मचता, रही सही मोहब्बत भी मिट जाती। गलती मेरी भी है, वह जवान हो गया था, मैं उसे निपट अजान बालक ही समझती रही, पर मैं क्या करूं, मेरी आंखें तो उसी को देखती हैं जो कभी स्कूल से पिटकर सिसकता हुआ मेरी गोद में चिपट जाता था और सुबकियां लेते हुए कहता था, भाभी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे सबक याद नहीं होता। उसके भाई क्रुद्ध होकर चिल्ला उठते, सबक याद नहीं होता हरामखोर, क्या कुलीगिरी करेगा। मैं कहती, देखो जी उसे गाली मत दो, कुलीगिरी करेगा या कुछ भी करेगा, तुम्हारे आगे हाथ नहीं पसारेगा। वह माथा ठोक लेते और कहते, तुम इसका सर्वनाश करके रहोगी। लेकिन भगवान की माया कि वही सर्वनाशी बालक आज उनके कान काटता है। वह उसके इशारों पर नाचते हैं, सारा व्यापार उसी के कंधों पर ठहरा है। नंदा इसी तरह सोचती रहती है, आज भी सोच रही है। रात काफी हो चुकी है परंतु रामदास अभी तक मंदिर से नहीं लौटे। शीला और गौरी दोनों सो गए हैं, छोटा बच्चा भी उसी के पलंग पर शांत नींद की परियों से खेल रहा है। वह उसे कई क्षण देखती रही, मानो बच्चे की निश्चिंतता ने माँ को बल दिया और वह मुग्ध हो उठी। सहसा तभी किसी ने द्वार खटखटाया, वह उठी और किवाड़ खोले, देखा सामने देवेन खड़ा है। अचकचा कर बोली, अरे देवेन कैसे आया इस वक्त। देवेन मुस्कुराया, अपने घर आने के लिए भी कभी वक्त देखना होता है, यह आज जाना है भाभी। नंदा अप्रतिभ हुई, बोली कुछ नहीं। तब देवेन ने पूछा, भैया नहीं आए। नंदा ने कहा, 10 बजे से पहले वह कभी नहीं लौटते। देवेन यह जानता था इसलिए चुप रहा। अब वे आग के पास जा बैठे। नंदा ने देखा कोयले बुझ चले हैं। उन्हीं को इधर उधर करके बोली, उनसे कुछ काम था। हाँ बहुत जरूरी, देवेन ने अस्थिर होकर कहा। भाभी आज 1 तारीख है ना। हाँ तो गोपाल को रुपए भेजने हैं। तो फिर वही रुपए लाया हूँ। नंदा अचरज से भर उठी, बोली रुपये लाया है, क्या उन्होंने मांगे थे। देवेन बोला, क्यों मांगते क्यों, ये 20 रुपये मैं बराबर देता आ रहा हूँ। नंदा बोली, मैं जानती हूँ देवेन तुम सदा 20 रुपये देते आए हो, पर क्या वक्त हमेशा एक जैसा रहता है। कल हम एक थे, आज हम अलग हैं। अब तेरे देने की बात नहीं उठती। देवेन हठात कांप सा उठा, क्षणभर उसे ढूंढे शब्द भी नहीं मिले। फिर सहसा बोला, यह तुमने क्या कहा भाभी, दुकान तो सजा दो रही हैं, घर बट जाने से क्या हम भाई भाई भी नहीं रहे। नंदा तनिक भी नहीं झिझकी, बोली, मैं यह कब कह सकती हूँ, भाई का रिश्ता तो विधाता भी नहीं तोड़ सकता। परंतु बात यह नहीं है, जब एक साथ थे तो दुनिया के लिए एक थे, तू 300 कमाता था और वह 30, परंतु आज दोनों पर मेरा एक जैसा अधिकार था। लेकिन आज तेरे पास 300 पर मेरे कोई अधिकार नहीं है, यह सीधी सी बात है। इससे भाई भाई का नाता नहीं टूट सकता। देवेन जानता है कि भाभी से बातों में कोई नहीं जीत सकता, परंतु ऐसा तर्क कर सकती है उसने कभी नहीं सोचा था। उसने कहा, भाभी मेरी आय पर तुम्हारा अधिकार ना हो, पर गोपाल का तो है, उसका तो चाचा रहूंगा ही। कहते कहते देवेन द्रवित हो आया। नंदा के मर्म को भी इस बात ने छुआ। वह बोली, गोपाल तेरा ही है देवेन, परंतु इससे क्या होता है, उसे पालने का जिम्मा तो हमारा है। हम यदि अपाहिज हों तो तेरे देने की बात पैदा होती है, वरना नहीं। जब बहुत थे तो खर्च करके अपना सिर ऊंचा रखा, आज कम है तो क्या सिर झुकाना होगा। नहीं देवेन, भाभी के जीते जी ऐसा नहीं होगा। आज तुझसे लेंगे तो कल लौटाने की बात उठेगी, इतनी शक्ति क्या तेरे भैया में है। नहीं, जाने क्या हो, भाई भाई में जो प्यार बचा है संभव है उसे भी खोना पड़े, तब दुनिया हंसेगी। इसलिए कहती हूँ देवेन, तू लेन देन की बात मत कर। देवेन व्यापार में पारंगत है, परंतु आज भाभी के सामने उसकी सदा चेतन बुद्धि कुंठित हो चली, और कुछ कह सकने में असमर्थ होने पर वह बोला, तो जाऊं भाभी। हाँ, अब जाना ही चाहिए, रात बढ़ रही है, घर में बहू अकेली है। देवेन बरबस उठा, उसकी आंखों में सहजी पानी नहीं आता, पर आज जैसे दुख कर रोने को आतुर हो उठी थी, लेकिन दुख के साथ उसे क्रोध भी कम नहीं आया था। इसलिए रुलाई रोककर तीखे स्वर में उसने कहा, भाभी मैं आज दरवाजे से पहली बार निराश लौटा हूँ, याद रखना, इस बात को भूलूंगा नहीं। इतना कहकर वह चला गया। नंदा हठात चकित सी उस अभेद अंधकार में उसे दूर तक देखती रही, फिर जोर से किवाड़ बंद करते हुए बोली, पगला कहीं खा, भाभी को कंगाल समझता है। धीरे धीरे बात पुरानी पड़ गई, दुनिया भूल गई कि दीवान घराने के दोनों भाई कभी अलग हुए थे। ऐसा लगा मानो वे सदा ही ऐसे रहते आए हैं, काम का सुख दुख में आना जाना होने लगा। देवेन सदा की भांति कमाने के लिए दिलावर जाता, तब गोरी बहुत दिनों तक चाची के पास जाकर सोता। एक दिन बड़े लड़के गोपाल ने कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर ली, उसे साइंस में विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र मिला। उसने माँ को लिख भेजा, मैं डॉक्टरी पढ़ने जाऊँगा। नंदा ने गदगद होकर अपने पति से कहा, सुनते हो, गोपाल डॉक्टरी में जाना चाहता है। रामदास ने सुन लिया, उसका मन भी गदगद हो उठा, परंतु माँ को रोककर जो चट्टान उनके सामने पड़ी है वह क्या सरलता से हटाई जा सकती है। इसलिए कहा, जाने के लिए मैं मना नहीं करता, परंतु पैसों के अभाव में काम कैसे चलेगा। नंदा बोली, रुपए नहीं है, यह कहकर क्या लड़के की जिंदगी बिगाड़ी जा सकेगी। पैसे जुटाने के लिए परमात्मा ने बुद्धि सभी को दी है। पुत्र का पक्ष लेकर नंदा ने पति पर जो चोट की थी उससे रामदास तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह धर्मपरायण व्यक्ति की तरह मान बैठे हैं कि विधाता जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं, परंतु नंदा का विधाता पर इतना गहरा विश्वास नहीं है। इसलिए धीमे पड़कर बोला, मुझे एक बात सूझती है, क्या मेरे पास जो गहने हैं उन्हें बेच दीजिए, उनसे लगभग 2000 रुपये आपको मिल सकते हैं, बाकी आपकी दुकान है, उसे गिरवी रख दो, धीरे धीरे छुड़ा लेंगे। रामदास सहसा चीहूँक उठे, बोली, क्या क्या कहती हो तुम। नंदा समझ गई कि दुकान की बात ने मर्म पर चोट की है, बोली, और रास्ता ही क्या है। रामदास ने उसी तरह दुखी मन से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बाप दादा की जायदाद को मुझे छूने का कोई अधिकार नहीं। अब नंदा का नारीत्व जाग उठा, क्रुद्ध स्वर में बोली, तो लड़के का गला घोटकर मार डालने का अधिकार तुम्हें मिला होगा, है ना? उसी को पूरा कर लो। हाय रे भाग्य, कैसे कुल में जन्म लिया उसने, जहां उसे जीने का हक भी नहीं है। लेकिन क्रोध में इतना कहकर दूसरे ही क्षण उसे अपने ऊपर ग्लानि हो आई। उसने देखा रामदास बेबस से उसे देख रहे हैं। उसका मन छटपटा उठा। आखिर वह भी क्या करे, वह गोपाल के पिता हैं, उसका उज्जवल भविष्य उनके बुढ़ापे का एकमात्र अवलंब है। परंतु पैतृक संपत्ति की ममता उसकी समझ में ठीक ठाक नहीं आई। कुछ सोचकर उसने कहा, तो एक काम करो। क्या? मैं देवेन को बुलाती हूँ, आप उससे कहना दुकान रखकर मुझे रुपए दे दे। इस प्रकार बाप दादा की जायदाद कुटुंब से बाहर नहीं जाएगी। और फिर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लड़के को पुकारा, गौरी और गौरी, जा अपने चाचा को बुला ला, कहना भाभी बुला रही है। लेकिन गौरी जाए इससे पहले देवेन अपने आप ही उधरा निकला। बोला, भाभी सुना है गोपाल डॉक्टरी पढ़ना चाहता है। हाँ भैया, वही बात सोच रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है भाभी, भगवान की कृपा से 4 साल के बाद हमारे कुटुंब में भी एक बड़ा आदमी हो जाएगा। भैया और भाभी दोनों गदगद हो गए। भाभी बोली, तेरे मुंह में घी शक्कर देवेन, पर बात रुपए पर आकर अटक गई है, इसीलिए तुझे बुलाने भेज रही थी। देवेन हठात चौंका, मुझसे काम था? कहो भाभी। नंदन ने रामदास की ओर देखा, मानो कहा, मेरा काम था वो मैं कर चुकी, अब तुम कहो। रामदास को बेबस बोलना पड़ा। धीरे धीरे अटक कर कहा, देवेन गोपाल के लिए रुपए चाहिए, इसलिए तू मेरी दुकान गिरवी रख ले। देवेन ने सुन लिया, सुनकर सुन सा रह गया, वाणी अवरुद्ध हो गई। नंदा ने उसे देखा, वह समझ गई कि जिस व्यथा के कारण देवेन सन्न रह गया है वह आकस्मिक अधिक है। इसलिए समझाकर बोली, देवेन बात असल में इतनी है कि हम नहीं चाहते कि दुकान को कोई कहे कि औलाद के मोह में इधर उधर रख दिया, इसलिए तू उसे ले ले। हम भी न छुड़ा सके तो घर में ही रहेगी। देवेन को अब वाणी मिली। बोला, भाभी तुम ठीक कहती हो, ये व्यवहार की बातें हैं और व्यवहार कुसर। आदमी बहुत दूर की सोचता है, परंतु कभी कभी जो अपने सबसे पास है उस पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ती। नंदा नहीं समझी। फिर वह बोला, सोचूंगा भाभी, ऐसे कामों में जल्दी करना अच्छा नहीं होता। देवेन की इस बात से भाभी और भैया दोनों अनमने से हो गए। सच तो यह है कि उन्हें स्वर अच्छा नहीं लगा। देवेन चला गया। नंदा की मुद्रा जटिल हो चली। प्रश्न हल करने का जो गुर उसने ढूंढ निकाला था, उसने तो प्रश्न को और भी जटिल कर दिया। लेकिन अब वह क्या करे, तीर कमान से निकल चुका था। उनका डर सच निकला। संध्या होते होते देवेन ने कहला भेजा, मैं दुकान नहीं रख सकूंगा। 3 दिनों के बाद देवेन जब प्रदेश जाने की तैयारी कर रहा था तो उसकी पत्नी विद्या घबराई हुई आई और बोली, अजी तुमने कुछ सुना क्या? जिज्जी जी ने अपना सब जेवर बेच दिया। सुनकर सहज भाव से देवेन ने कहा, जानता हूँ, भाभी गोपाल को डॉक्टरी पढ़ाने भेज रही है, जेवर का इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता है। विद्या उसी तरह बोली, और आपके भैया ने अपनी दुकान उठा ली है, वह किसी के साथ कपड़े की दुकान खोल रहे हैं। अब देवेन चौंका, यह किसने कहा तुमसे? शची की बहू ने, उसी के मालिक के साथ तुम्हारे भाई ने साझा किया है, वे रुई का सौदा करने की बात सोच रहे हैं। देवेन अनमना सा हो गया। बोला, भैया रुई का सौदा करेंगे? जी हाँ, अब वह खूब रुपये कमाना चाहते हैं। सचमुच न जाने क्या हुआ कि उसके हृदय में एक विचित्र घबराहट होने लगी। उसका स्वर शिथिल होने लगा। वह शून्य में ताकता हुआ बोला, विद्या भैया ने परसों भी मुझसे कहा था। उत्सुक होकर विद्या बोली, क्या कहा था? कि मैं उनकी दुकान लेकर उनके रुपए दे दूं। फिर मैंने इनकार कर दिया। विद्या ने गहरी सांस ली, कहा, ठीक ही तो किया, सगे संबंधियों से लेन देन करना दुश्मनी पैदा करना है। हाँ विद्या, भाभी ने भी एक दिन मुझसे यही बात कही थी, उनकी बातें मैं खूब याद रखता हूँ, परंतु भैया धर्मवीर व्यक्ति हैं, वह सौदा करना क्या जाने। विद्या बोली, औलाद का पालना भी तो धर्म है। गोपाल से जब इतनी आशा है तो उसके लिए सब कुछ करना होगा। देवेन अब मुस्कुरा उठा, कहने लगा, ठीक है विद्या, आशा सब कुछ करा देती है। मैं व्यर्थ ही डर गया, कल सवेरे ही हमें जाना है। और देवेन चला गया। तब विद्या का मन न जाने क्यों अपने आप ही अंदर उमड़ने लगा। वह अनमनी सी सामान सहेजने लगी, सोचने लगी, वह उदास है, जिज्जी का घर बिगड़ रहा है, मैं जा रही हूँ, सब कुछ अजीब है, कहीं कोई तुक नहीं, न जाने क्या होने वाला है। फिर धीरे धीरे संध्या हो गई, सामान बन गया, देवेन लौट आया। विद्या ने देखा उसके हाथ में एक कागज है, पूछा, यह है क्या है? सहसा देवेन ने कहा, यह भैया की दुकान का कागज है। विद्या जैसे सिया रोटी, बोली, क्या कहते हो? ठीक कहता हूँ विद्या, मैंने भैया की दुकान ले ली है, कहकर उसने उसी तरह कागज के टुकड़े करने शुरू कर दिए। विद्या हतबुद्धि बोली, आप क्या कर रहे हैं? आखिर सोचता हूँ कहीं पागल ना हो जाए, उसके कारण को समूल मिटा देना चाहता हूँ। विद्या की समझ में खाक भी नहीं आया, वह घबराई सी कहने लगी, क्या कहते हो आप? इतने रुपए क्यों फेंक दिए जाएंगे? देवेन ने कहा, नहीं विद्या, भाभी को मैं जानता हूँ, उन्हीं की गोद में पलकर तो इतना बड़ा हुआ हूँ, रुपए होंगे तो रोकेंगे नहीं, और जब देने आएंगी तो मैं लौटाऊंगा भी नहीं, ब्याज तक ले लूंगा, व्यवहार की बात है, इसमें रिश्ते नाते बंधन नहीं बन सकते। विद्या बोली, मैं नहीं जानती यह सब क्या हो रहा है। देवेन हंस पड़ा, मैं भी नहीं जानता विद्या कि यह सब क्या हो रहा है। उसने जाकर कहा, मैं दुकान लेने को तैयार हूँ, तो सच कहता हूँ, भाभी बोल सकने में एकदम असमर्थ नादान बालक की तरह रो पड़ी। विद्या, आज मैंने जीवन में भाभी को पहली बार रोते हुए देखा है। मैं हंसता हूँ, तुम गुस्सा करती हो, करो, पर आज मैंने भाभी को रोते देख ही लिया। कहते कहते देवेन उत्तेजित हो उठा, उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उन्हें आग में डालकर बोला, सुनो विद्या, रुदन और हास्य का यह दृश्य यहीं समाप्त होता है। प्रार्थना करता हूँ कि समाप्ति का समाचार दुनिया तक ना पहुँचे। आगे उसकी वाणी रुक गई, मार्ग में आंसू अड़ गए थे। तो ये थी आज की कहानी, आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरा पॉडकास्ट सुनते रहिए। धन्यवाद।